अध्याय आठवां। उसके बाद मैं घूमते हुए स्वयंभूनाथ पहुंचा, जो काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। धान के विशाल फैले खेतों से घिरे इस सुंदर पहाड़ी के शिखर पर मंकी टेम्पल है। एक विशाल स्तूप वाले इस प्राचीन बौद्ध मंदिर को 2000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। उसके शिखर के आधार पर बनी भगवान बुद्ध की 8 आँखें चारों दिशाओं का निरीक्षण करती हैं। आज भी आंखें कुछ अद्भुत ही दिखने वाली थी। न जाने क्यों एक सुबह मेरी इच्छा काठमांडू जाने की हुई, इसलिए मैं पहाड़ पर स्थित अपने एकांतवास निवास स्थान को छोड़कर पैदल शहर में गया और कुछ समय तक गलियों और मंडियों में घूमता रहा। फिर मैं ध्यान के खेतों से होते हुए स्वयंभूनाथ की ओर वापस चल दिया। दूर तक फैली हरियाली और आकाश को भेदती हिमाच्छादित चोटियों के कारण काठमांडू घाटी धरती पर स्वर्ग की भांति है। जब मैं पानी से भरे धान के खेतों के चारों ओर बनी मेड़ पर चल रहा था तो हल्की बूंदाबांदी होने लगी। सूर्य को ढकते हुए मानसून के काले बादल आकाश में छा गए और मूसलाधार वर्षा का संकेत देने लगे। जैसे ही फुहार हल्की बारिश में बदली, मैं आसपास आश्रय खोजने लगा, किंतु मुझे एक भी पेड़ दिखाई नहीं दिया। धान के खेतों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। तभी दूर मुझे एक अधेड़ प्रतीत होता व्यक्ति दिखा, जो हाथ में छाता लिए जा रहा था। उसके छाते में सिर छिपाने की आशा से मैं छोटे कदमों से पतली मेड़ पर तेजी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। रास्ता तंग और फिसलन भरा था, इसलिए हम दोनों साथ में नहीं चल सकते थे, सो मैं उसके पीछे दुबक गया। छतरी के नीचे रहने का प्रयत्न करते हुए मेरे पैर बार बार खेत के कीचड़ में फिसल जाते। इस बीच वो व्यक्ति एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। शायद वो मेरे अनाधिकृत प्रवेश से डर गया था, या वो कीचड़ में न गिरने पर ध्यान दे रहा था। इस प्रकार हम दो अजनबी एक साथ निर्जन और पानी से भरे खेतों पर कुछ समय तक चलते रहे। मूसलाधार बारिश के बीच उस विशाल ध्यान के खेत में केवल हम दोनों के एक छतरी को साधे जा रहे थे। 10 मिनट पश्चात जब तूफान थम गया, मैंने उस अजनबी को धन्यवाद दिया। मुझे देखने के लिए वो पहली बार मुड़ा। हमारी आंखें मिली मानो बिजली गिर गई। हमारे मुंह खुले के खुले रह गए, आंखों में आंसू उमड़ आए। ये कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए हम स्तब्ध खड़े रहे, मानो काल भी थम गया था। छतरी कीचड़ में गिर पड़ी। गहरी मिच में चिल्लाया, मंक। मानसून भरे आकाश के नीचे उल्लास से फटते हृदयों के साथ हमने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। हम फिर से मिल गए, मैंने कहा। जीवन के रहस्यों से रोमांचित हम हिमालय की उस विशाल घाटी में खड़े थे। ऑयल ऑफ क्रीट में हमारी दुखद विदाई के पश्चात हम दोनों अपने अपने मार्ग पर चल दिए थे। बचपन से कभी अलग नहीं हुए हम दोस्त, नियति के हाथों अलग कर दिए गए थे। और अभी उसी अदृश्य कठपुतलीकार ने नेपाल के एक सुनसान धान के खेत में हमें फिर से मिला दिया था। खुशी से झूमते हुए हम उस स्थान की ओर चल दिए जहां गैरी रुका था। पूरे समय हम दोनों अपने अनुभवों को बांटते रहे। तंग मेड़ों पर गिरते फिसलते गैरी आगे चल रहा था और मैं उसके ठीक पीछे। क्या तुम इज़राइल पहुंच पाए? वो मेरी ओर मुड़ा और अपनी दाढ़ी को सहलाने लगा, जो हमारे बिछड़ने के बाद 11 महीनों में कुछ इंच लंबी हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारे क्रीट छोड़ने के बाद मैंने मछली पकड़ने की नाव पर काम करके इज़राइल जाने के लिए थोड़ा धन कमाया। फिर मैंने कुछ समय के लिए किब्बुट्स में काम किया, यानी इज़राइल के फार्म पे, और वहां से कुछ पैसे लेकर भारत की ओर निकल पड़ा। लेकिन तुम यहां कैसे पहुंचे? मैंने मैजिक बस ली। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर से चलने लगा। उसने एक सस्ती बस का वर्णन किया जो फटीचर यात्रियों को लेकर यूरोप से भारत आती थी। इज़राइल से बस आकर उसने इस्तांबुल में बस पकड़ी और मध्य पूर्व एशिया पार करके अंत में पुरानी दिल्ली पहुंच गया। और तुम इस निर्जन धान के खेत में क्या करने आए? मैंने उससे पूछा। दिल्ली की प्रचंड गर्मी में मेरे लिए बहुत भारी रही, गैरी ने बताया। वो भी अभी रोमांच से कांप रहा था। इसलिए मैजिक बस के कुछ मित्रों के साथ मैं काठमांडू में आया और एक गांव में छोटा सा घर ले लिया। धान के खेतों को पीछे छोड़ हम उस गांव के निकट पहुंचे। मैं अपने पुराने मित्र के साथ साथ चलने लगा। कीचड़ से भरे रास्ते पर एक भैंस चलती हुई हमारी ओर आई, इसलिए हम उसका रास्ता छोड़कर किनारे हो गए। मंक, गैरी ने कहना जारी रखा, मैं तुमसे मिलने की आशा में भारत आया था, किंतु इस विशाल देश में करोड़ों लोगों को देखकर मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये असंभव है। मैं जानता था कि तुम उन अड्डों पर तो नहीं मिलोगे जहां आम पर्यटक जाते हैं। मैंने अनुमान लगाया कि तुम किसी गुफा या निर्जन आश्रम में रहोगे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। गैरी रुक कर मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं। 1971 अगस्त का महीना था। हम क्रीट में एक दूसरे से अलग हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका था। मेरे रूप को देखकर गैरी समझ सकता था कि मैं एक साधु का जीवन यापन कर रहा था। मध्य पूर्व की दुष्कर यात्रा, महान योगियों के साथ व्यतीत किया समय और एकांत भरे अनेक महीनों ने मुझे एक पक्का साधु बना दिया था। इसलिए गैरी मुझे इस स्थान पर लाने के लिए झिझक रहा था जहां वो अपने मित्रों के साथ छुट्टियां मना रहा था। जब नेपाली गांव का एक घर पश्चिमी हिप्पियों को किराए पर दिया जाए तो क्या होता है। जब हम उस छोटे मकान के भीतर गए तो रॉक एंड रोल संगीत जोर से बज रहा था। स्त्री पुरुष उत्तेजक नृत्य कर रहे थे और धुएं के बादलों के बीच अफीम की चिलिम बांटी जा रही थी। गैरी ने मुझे अपने मित्रों से मिलवाया, जिन सबका मैंने नम्रता से अभिनंदन किया। ये कहना कि मैं उस माहौल में बैठ नहीं पा रहा था एक न्यूनोक्ति होगी। मैं केवल किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा। कुछ समय पश्चात मैं गैरी को एक शांत खुले मैदान में ले आया और हम एक केले के पेड़ के नीचे बैठ गए। आसमान में छाए बादलों की ओढ़नी से शीतल ओस गिर रही थी। हमने ताज़ी पहाड़ी हवा की गहरी सांसें ली और अंदर छाए अफीम के धुएं से छुटकारा पाकर राहत का अनुभव किया। यद्यपि मुझे डर था कि कहीं मैं गैरी पर अकारण दोषारोपण न कर दूं, फिर भी मैंने अपने मित्र के साथ खुलकर बात की। गैरी, तुम पूरी दुनिया घूमकर यहाँ आए हो, ये आध्यात्मिकता की भूमि है, फिर भी तुम यहाँ अपने साथ पश्चिम की हिप्पी सभ्यता लाए हो। इस प्रकार तो तुम शिकागो में भी रह सकते थे। तुम वही पुराने काम कर रहे हो, अपितु पहले से कहीं और अधिक, केवल स्थान बदल गया है। तुम आगे कैसे बढ़ोगे, इससे लाभ क्या होगा तुम्हें। मैंने हृदय से उससे याचना की, मेरे भाई, जब तक तुम यहाँ पर हो तो कृपया यहाँ की आध्यात्मिक संपदा का अनुभव करने का प्रयास करो। यदि कहो तो मैं तुम्हें सभी तीर्थ स्थलों पर ले जाऊंगा और एक साधु का जीवन सिखाऊंगा। गैरी दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। मुझे सोचने का समय दो। मान जाओ गैरी, मैंने जोर दिया, क्या तुम्हें याद नहीं जब तुम मेरे आगे अपने साथ यूरोप आने के लिए गिड़गिड़ाए थे। मैं अपने सभी काम छोड़कर तुम्हारे साथ चल दिया था। अभी मैं गिड़गिड़ा रहा हूं कि तुम मेरे साथ तीर्थस्थलों पर चलो। मैं अपने मित्र से प्रेम करता था और ये देखकर मुझे पीड़ा हो रही थी कि इतनी दूर आकर भी वो इस अनमोल अवसर को खो रहा था। अगले दिन गैरी ने अपने दोस्तों को विदाई दी और साधुओं की पाठशाला में प्रवेश किया। नए नए स्थानों पर नए नए लोगों से मिलते हुए हम फिर से एक साथ जीवन के अर्थ को खोजने लगे, किंतु इस बार हम उस पद्धति का पालन कर रहे थे जो चिरकाल से साधुओं द्वारा स्थापित की गई। दिन प्रतिदिन मैं गैरी को सिखाने लगा कि भारत में एक साधु के रूप में कैसे जीवन यापन किया जाता है। कितना विस्मित था वो भारत में हिचहाइकिंग का तरीका देखकर, चलती ट्रेनें की तीसरे दर्जे की खिड़की से अंदर छलांग मारना। मैंने उसे सादे भोजन की भिक्षा मांगना और साधु के समान कपड़े पहनना भी सिखाया। एक अधेड़ स्वामी ने हमें अमरनाथ के विषय में बताया, जो कश्मीर में हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक प्रसिद्ध गुफा है। उसने कहा कि जो भाग्यवान व्यक्ति वहां की कठिन तीर्थयात्रा को पूरा करता है उसे महान आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होते हैं। गैरी उस रोमांच के लिए तैयार था और मैं भी। हम निकल पड़े। काठमांडू से निकलकर हम भारत की ओर चल दिए और एक ट्रक के पीछे बैठकर पहले रक्सौल फिर पटना पहुंचे, जहां मैंने गैरी को रामसेवक स्वामी जी से मिलवाया। स्वामी जी मुझे पुनः देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। मेरे पास वो छड़ी अभी भी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। गैरी अचरज से देख रहा था कि भारत में मैं किस प्रकार के लोग मेरे दोस्त थे। पटना से हम ट्रेन द्वारा पश्चिम दिशा की ओर गए। गैरी एक साधु के रूप में वाराणसी की यात्रा करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक था। वहां पहुंचकर हम सुबह सुबह वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में गए। पीतल के घंटे बज रहे थे, मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और अगरबत्तियों से उड़ते हुए धुएं की घने बादल ऊपर हवा में विलीन हो रहे थे। मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपको जानने और प्रेम करने के लिए लालायित हूँ, कृपया मुझे मेरा मार्ग दिखाइए। उसी क्षण मुझे कुछ हुआ, आशा की कि एक भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे लगा यदि मैं भगवान के सम्मुख विनीत हो जाऊंगा तो सब कुछ स्वयं प्रकट हो जाएगा। मुझे लगा कि उनका हाथ मुझ तक पहुंच रहा है और मेरे जीवन में कुछ विशेष घटने वाला है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हम ट्रेन के ऐसे डिब्बे में जा घुसे जिसमें लोग एक दूसरे से चिपक कर खचाखच भरे थे। ऊपर से मानसून की उमस भरी गर्मी थी। सीटी बजी, भाप के इंजन ने धुएं के बादल उड़ाए और हिस करने लगा। स्टील के भारी पहिए घूमे, ट्रेन ने झटका खाया और हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मानसून के भयंकर तूफान ने खेतों को कीचड़ भरी झील बना दिया और उनके बीच फंसे इंजन को मानो लकवा मार गया। खड़े खड़े घंटों बीत गए। तेज गर्मी ने अपनी शारीरिक असुविधाओं को भूलने का प्रयास करते हुए मैं रेल की सिटी सुनने के लिए लालायित हो रहा था। लगभग दो दिन पश्चात ट्रेन खेत से निकली और सूर्योदय से पहले एक अनजान स्टेशन पर आ रुकी। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, गैरी और मैं राहत की कुछ सांसें लेने के लिए खिड़की से बाहर कूदकर प्लेटफॉर्म पर आए। ताज़ी हवा बहुत सुहावनी थी। भीड़ से भरा मध्यम प्रकाशित प्लेटफॉर्म गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन हमारे लिए वो एक स्वर्ग के समान था। जहां हमें पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और हाथ पैर हिलाने के लिए खुला स्थान मिल रहा था। किंतु जब हम अंगड़ाई ले रहे थे कि सिटी बजी, इंजन ने हिस हिस किया और ट्रेन आगे सरकने लगी। हम घबरा कर उसके साथ भागे और खिड़की से अंदर घुसने का प्रयास किया, परंतु हम भीड़ को भेद नहीं पाए। हमने एक के बाद एक खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुसने का प्रयत्न किया। अंततः ट्रेन पटरियों पर से अदृश्य हो गई और हम पीछे छूट गए। हम वहां खड़े थे, एक अनजान स्थान पर फंसे हुए, न जानते हुए कि अब अगली ट्रेन कब आएगी। गैरी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अब क्या? यहां पर आठवां अध्याय समाप्त होता है।